हरे कृष्ण। आगे हम बढ़ते हैं श्री कृष्ण के गुण, शायद 41वां नंबर। प्रेम वश्य प्रतिवाद पढ़ा था ना, हाँ उसके आगे सर्व मंगलमय। जो व्यक्ति हर के लिए शुभ कल्याणकारी कार्य में सदैव लगा रहता है वह सर्व कल्याणप्रद या सर्व मंगलमय कहलाता है। इस श्लोक से भगवान कृष्ण के तिरोधान होने पर उद्धव उनके कार्यकलापों का स्मरण करते बोले, कृष्ण अपनी अद्भुत लीलाओं से समस्त ऋषियों को प्रसन्न करते थे। उन्होंने क्रूर राजाओं के आसुरी कार्यों को ध्वस्त किया, सभी पवित्र पुरुषों की रक्षा की और युद्ध क्षेत्र में समस्त क्रूर योद्धाओं का विनाश किया। आते हुए सभी लोगों के लिए सर्व मंगलमय है। भगवान का प्रकट होना इस धरातल पर वास्तव में मंगलकारी है, क्योंकि भगवान जब प्रकट होते हैं तो सारे अशुभ लक्षण जो है वो ध्वस्त हो जाते हैं। और जैसे कि गीता में भगवान कहते हैं, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय चतुष्कृता। तो असुरों का संहार करने के लिए और भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान यहाँ प्रकट होते हैं, विशेष रूप से भक्तों की प्रसन्नता के लिए, लीलाओं को संपन्न करने के लिए भगवान यहाँ पर प्रकट होते हैं। और ये लीलाएं वास्तव में पूरे संसार के लिए मंगलकारी है। जहां जहां पर कृष्ण के नामों का उच्चारण होता है, कृष्ण की लीलाओं का गुणगान होता है, वो वास्तव में सभी के लिए मंगलकारी हो जाता है। और इस कारण से हम देखते हैं कि गोपियों ने भी यहां तक ये बोला, श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भूरी ग्रंथ ये भूरी ग्रंथ ये भूरी दाजना भूरी ग्रंथ ये भूरी दाजना तव कथावतम तप्त जीवनम श्रवण मंगलम क्या है कभी भी रेतम कलम शाप हम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भूवि गणंते ये भूरी ताड़ना। तो ये मंगलकारी है, मंगलकारी करने वाला है और सबके लिए हित करने वाला है। और जो जो कृष्ण कथा का पान करते हैं, कृष्ण कथा का श्रवण करते हैं, उनको भरपूर लाभ मिलता है और संसार के इस भयावह स्थिति से वो बाहर निकल जाते हैं। तो कृष्ण कथा ही वास्तव में रसायन है, यही खुराक है हम सबकी बीमारियों के लिए। भवसागर में जो लिप्त जीव है, बद्ध जीव है, वो इस बद्ध अवस्था से बच पाते हैं जब उनको कृष्ण कथा सुनने का ये परम मौका मिलता है। श्रील प्रभुपाद ने पूरे विश्व में पूरे जगत को मंगलमय बना दिया, क्योंकि हर जगह कृष्ण कथा का वितरण करते। भूरी दाजन, भूरी दाजन का मतलब यही है कि परोपकार करने वाले। और असली परोपकार करने वाले कौन हो सकते हैं, जो कृष्ण कथा का वितरण कर रहे हैं, ऐसा गोपियां बोल रहे हैं। तो प्रभुपाद ने पूरे विश्व भर में कृष्ण कथा का वितरण किया, श्रीमद् भागवत के माध्यम से, भगवद गीता के माध्यम से पूरे पृथ्वी में, और नाम संकीर्तन के माध्यम से पूरे विश्व को मंगलकारी बना दिया। सारे अशुभ लक्षण दूर हो गए। कली काल के अशुभ लक्षण बताए गए शास्त्रों में, वो दूर हो जाते हैं अगर हम कृष्ण कथा का पान करते हैं। निरंतर श्रवण कीर्तन करने से कलयुग के प्रभाव से हम लोग बचते हैं। इसलिए शास्त्र में उल्लेख है, हरे राम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्ते व नास्ते व नास्ते व कथिर अन्यथा। और कोई उपाय नहीं है, अगर वास्तव में चाहते हैं कि सबका हित हो और सबके लिए मंगलमय हो ये जगत, तो केवल कृष्ण के नामों का उच्चारण ही पर्याप्त है अपने आप में। कृष्ण के नाम, उनकी लीलाएं, उनकी लीलाओं का श्रवण करना, उनकी लीलाओं का कीर्तन करना, ये वास्तव में मंगलकारी है। और इसलिए कलिकाल में अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता नहीं पड़ती है, हरि नाम ही सबसे उत्तम कोटि का अस्त्र है। और उसका हम निरंतर उपयोग करेंगे तो हमारे लिए ये कलयुग भी जो है सत्युग के समान है। ये फिर कलयुग नहीं है, हम सब सत्युग में रहते हैं। फिर जब जब हम हरि नाम लेते हैं, हम वास्तव में सत्युग में है। कलेर दोषो निधे राजन अस्थिये को ही महान गुणा कीर्तनादि व कृष्ण से मुक्त संग परम ब्रजेत। तो ये एक महान गुण है कलयुग में, कि कलयुग में कृष्ण का कीर्तन करने मात्र से हम कली के प्रभाव से बचते हैं और हमारे लिए हर परिस्थिति जो है मंगलकारी हो जाती है। जैसे कि श्रील रूप गोस्वामी ने भी साधना भक्ति का वर्णन करते हुए सबसे पहले उन्होंने क्या बताया, शुद्ध भक्ति का लक्षण पहला बताया क्लेशाग्नि, और दूसरा बताया शुभदा, है ना। यानी कि जब हम सभी क्लेशों से छुटकारा पा लेते हैं तो फिर क्या होता है, हमारे लिए सब कुछ शुभदा बन जाता है, शुभदा हो जाता है, ऑस्पिशियस हो जाता है, मंगलकारी हो जाता है। और ये सबसे बड़ा तरीका है मंगलकारी होने का, क्या कि जब हम लोग कृष्ण कथा का प्रचार प्रसार करते हैं, जैसे कि श्री चैतन्य महाप्रभु जब झारखंड के जंगलों में जा रहे थे, यहां तक कि उन जानवरों का भी उद्धार किया, उन पशुओं का भी उद्धार किया जो झारखंड के जंगलों में थे, उनके लिए भी मंगलकारी थे, ये सबके लिए मंगलकारी है और ये सबको आकर्षित करने वाला है। ये कृष्ण भावना का आंदोलन सबको आकर्षित करने वाला है, यहां तक कि जानवरों को भी आकर्षित करता है, फिर मनुष्यों के बारे में कहना क्या। और श्रील प्रभुपाद ने कैसे विदेशों में उन मलेच्छो यावनों को भी आकर्षित किया इस कृष्ण भावना आंदोलन से। तो ये उदाहरण है कि किस तरह से सर्व मंगल में है परम शक्तिशाली। जो व्यक्ति अपने शत्रु को विपत्तियों में डाल सकता है वह शक्तिशाली कहलाता है। जब कृष्ण इस धराधाम में विद्यमान थे तो उन्होंने अपने शत्रुओं को उसी तरह खदेड़ दिया जिस तरह शक्तिशाली सूर्य अंधकार को गुफाओं में शरण लेने के लिए भगा देता है। उनके शत्रु उल्लुओं की तरह उनकी दृष्टि से ओझल होकर भाग गए। उल्लू रात में दिखाई देते हैं जब अंधकार होता है, लेकिन जब सूर्य उदय होता है तो सारे उल्लू भाग जाते हैं, छुप जाते हैं। तो इसी तरह से इन असुरों और राक्षसों की तुलना जो है उल्लुओं से की गई है। जैसे ही कृष्ण प्रकट हुए तो ये सारे राक्षस रूपी उल्लू जो है ये सब भाग गए। कृष्ण सूर्य समा माया हो अंधकार, जहां कृष्ण माया नहीं अधिकार। तो जहां पर कृष्ण है वहां पर कोई माया का अधिकार नहीं है, जहां सूर्य उदय होता है वह अंधकार का कोई अधिकार नहीं है। तो वहां पर ऐसे उल्लुओं जैसे जो राक्षस और असुर थे वो सब भाग गए। जरासंध ने कितनी बार आक्रमण किया मथुरा में, है ना, बार बार आक्रमण, कितनी बार आक्रमण किया जरासंध जानते हैं, 17 बार। और उसके बाद क्या हुआ फिर, नहीं नहीं जरासंध के साथ क्या किया, हाँ भीम को साथ में लेकर क्या कराया, द्वंद कराया, द्वंद युद्ध, और इस तरह से जरासंध को मारा, भीम ने मारा। तो इस तरह से देखते हैं कि भगवान परम शक्तिशाली है, और कई बार तो भगवान को स्वयं ही ये कार्य नहीं करना पड़ता, है ना। भगवान इतने शक्तिशाली है कि भगवान जो है कि और कार्य करते हुए भी इन कार्यों को संपन्न कर देते हैं। जैसे इंद्र को अगर सबक सिखाना था तो इंद्र को कुछ कहा ही नहीं भगवान, केवल गिरिराज जी को धारण किया। ब्रह्मा जी को जब शिक्षा देनी थी तो ब्रह्मा जी को एक शब्द नहीं बोला, उनको डांटा तक नहीं, है ना, केवल क्या किया अपना ही विस्तार कर लिया, इस तरह से ब्रह्मा जी को शिक्षा दी। ये भगवान की अचिंत शक्ति है, है ना, भगवान की अचिंत शक्ति है। पराशर शक्ति विविधैव श्रूयते स्वभाव की ज्ञान बल क्रिय च, ये भगवान की विविध शक्तियां हैं, सदनी शक्ति, लादनी शक्ति, असंभव शक्ति, ये अपनी शक्तियों के द्वारा भगवान जो है कार्य करते हैं, शक्तियों के द्वारा। बिना शक्ति के भगवान कोई लीला संपन्न नहीं कर सकते। अंतरंगा शक्ति, खासकर भगवान की जो स्वरूप शक्ति है अंतरंगा शक्ति है, उसके माध्यम से भगवान कोई भी लीलाएं संपन्न, लीलाओं का संपन्न करते हैं। गिरिराज जी को धारण किया अंतरंगा शक्ति के माध्यम से, जगन्नाथ जी के रथ पर आरूढ़ होते हैं, जगन्नाथ जी बैठते हैं रथ पर, रथ चलने लगता है तो रथ के जो पहिए हैं, वो जो पहिए हैं पहियों में जो अलग अलग स्पोक्स होते हैं वो सारे जो है भगवान की शक्तियां ही हैं, अंतरंगा शक्ति है। 16 स्पोक्स होते हैं, और ये जो वास्तव में 16 स्पोक्स है, 16 स्पोक्स हैं, ये सारे आध्यात्मिक शक्ति हैं, स्पिरिचुअल एनर्जीज हैं, और इन शक्तियों के माध्यम से जगन्नाथ अपनी लीलाएं करते हैं। और ये इच्छा है उनकी कि अपनी शक्ति के माध्यम से ही वो लीलाओं को संपन्न करें। इस कारण से प्रश्न ये उठ सकता है कि अगर शक्ति के माध्यम से अपनी अंतरंगा शक्ति से वो लीलाओं को संपन्न करते हैं तो फिर तो शक्ति को ही परम मानना चाहिए, फिर कृष्ण को क्यों हम परम भगवान कहते हैं, है ना। ये इसका उत्तर दिया है श्रील भक्ति ठाकुर ने जय धर्म में कि ये भगवान कृष्ण की इच्छा है कि वो अपनी अंतरंगा शक्ति के ही वशीभूत हो जाते हैं, वो उनकी इच्छा है, उनकी सेवा को देखकर और जितना वो आनंद प्रदान करती है कृष्ण को अपनी सेवा के माध्यम से, तो कृष्ण जो है वशीभूत हो रहना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि उनका स्थान जो है सर्वोपरि हो, तो उनकी इच्छा के कारण ऐसा होता है। और इस कारण से देखते हैं कि कोई भी लीला उनको संपन्न कर पाते हैं इन शक्तियों के द्वारा, आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा, अंतरंग शक्ति के द्वारा। तो इसलिए भगवान जो है परम शक्तिशाली है। भगवान की कोई भी लीला आप देखें, भगवान को सीधा कुछ नहीं करना पड़ता है। जैसे कालेवान को अगर शिक्षा देनी थी तो भगवान ने स्वयं नहीं मारा, रणभूमि छोड़ के चले गए। और मुचुकुंद के बाद जब पहुंचे तो मुचुकुंद ने अपनी आंखें खोली तो वो चलकर भस्म हो गए, कालेवान चलकर भस्म हो गया। तो कृष्ण ने कुछ भी नहीं किया। और यहां तक कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में भी भगवान ने यह वचन लिया था कि कोई वो अस्त्र शस्त्र उठाएंगे नहीं, और बिना अस्त्र शस्त्र उठाए उन्होंने अर्जुन की सहायता की, है ना। और सारी अपनी जो शक्ति है नारायणी सेना को उन्होंने किसको दे दिया, दुर्योधन को दे दिया, और स्वयं जो है वो अर्जुन के पास रह गए अकेले। लेकिन कृष्ण ने जो है अर्जुन को चुना और दुर्योधन ने नारायणी सेना को चुना, लेकिन फिर भी अर्जुन विजय रहे क्योंकि कृष्ण के साथ। और कृष्ण ने क्या बोला था कि मैं तो अस्त्र शस्त्र भी नहीं उठाऊंगा, लेकिन फिर भी अर्जुन को कृष्ण पर पूरा विश्वास था, भगवान पर पूरा विश्वास था, पूरी श्रद्धा थी। तो इसलिए भगवान गीता में ये कह रहे हैं, कौन त्या प्रति जाना ही नामे भक्ता पुनर्षति, हे कुंती पुत्र घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। इसलिए भगवान क्या है, परम शक्तिशाली है, भगवान हमेशा हमें रक्षा प्रदान करते हैं, ये बात पर पूरा विश्वास होना चाहिए। तो ये बात यहां पर बताई जा रही है, ये भगवान का बहुत ही सर्वोपरि गुण है। सर्व प्रसिद्ध परम यशस्वी, अपने निर्मल चरित्र के कारण मनुष्य परम यशस्वी कहलाता है। कहा गया है कि कृष्ण के यश का विस्तार चांदनी के समान होता है जो अंधकार को प्रकाश में बदल देती है। दूसरे शब्दों में यदि कृष्ण भावनामृत का विश्व भर में प्रसार किया जाए तो अज्ञान का अंधकार एवं संसार की चिंता, शुद्धि शांति तथा संपन्नता की शुभ्रता में परिणत हो जाए। जब देवऋषि नारद भगवान का यशोगान कर रहे थे तो शिवजी के कंठ की नीली रेखा लुप्त हो गई। ये देखकर शिव पत्नी गौरी इस शंका से कि वह कहीं उनके पति के वश में कोई छद वेशी तो नहीं है, उन्हें छोड़कर तुरंत चले गए। इस तरह कृष्ण के नाम का कीर्तन सुनकर बलराम जी ने देखा कि उनका वस्त्र सफेद हो गया है, यदि वे सामान्यतया नीला वस्त्र धारण करते थे। इसी तरह गोप कुमारियों ने देखा कि यमुना नदी का सारा जल दूध बन गया है, अतएव वह उसे बिलो कर मक्खन निकालने लगी यमुना जी से। दूसरे शब्दों में कृष्ण भावनामृत या कृष्ण के यश का प्रसार करने से हर वस्तु श्वेत एवं शुद्ध बन गई, निर्मल बन गई। तो कृष्ण भावना का जब हम प्रसार करते हैं तो सब कुछ निर्मल हो जाता है, शुद्ध और पवित्र हो जाता है। और इससे यह भी शिक्षा मिलती है कि वास्तव में अगर कोई यशस्वी है तो वो केवल कृष्ण है, और हमारा जीवन जो है उन्हीं के यशोगान में बीतना चाहिए, ये हमारे लिए सबसे लाभकारी होगा, ना कि हम स्वयं कृष्ण बनने की इच्छा करें। जैसे मायावादी दार्शनिक होते हैं वो सब कृष्ण बनना चाहते हैं और स्वयं कृष्ण तो बन नहीं पाते हैं और दूसरों को भी साथ में नरक ले जाते हैं। कुछ समय के लिए, अल्पकाल के लिए उनका यश फैलता है, उनकी इच्छा भी भगवान पूरा करते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद उनकी पोल खुल जाती है कि वो कृष्ण नहीं है, वो तो एक साधारण मनुष्य भी नहीं है, असुर से भी बदतर है। तो इस प्रकार यशोगान अगर होना चाहिए, वैकुंठ गुणान वर्णने, जैसे कि अम्बरीश महाराज के लिए लिखा है, अम्बरीश महाराज क्या कर रहे थे, वैकुंठ पति का गुणगान करते थे निरंतर, है ना, वैकुंठ पति का गुणगान करते। तो इसलिए निरंतर भगवान का गुणगान करना चाहिए, यशोगान। ऐसे ये जो कार्तिक मास है, दामोदर मास है, ये सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे ज्यादा हम लोग भाग्यशाली हैं कि इस कार्तिक मास में हमें कृष्ण की विभिन्न लीलाओं का गुणगान करने का मौका मिलता है। दामोदर लीला ही नहीं केवल, बहुत सारी लीलाएं भगवान ने की इसी मास में। इस मास में कार्तिक मास में हम देखते हैं कि पहले दिन कृष्ण ने शारद पूर्णिमा के दिन महारास किया और राधारानी के द्वारा भी वो बन गए, श्री कृष्ण राधारानी के द्वारा बांधे गए, इसलिए उनको राधा दामोदर भी कहा जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं और क्या है उसके बाद, कल जैसे कि राधा कुंड का प्राकट्य, राधा कुंड जो है प्रकट हुए हैं, श्याम कुंड प्रकट हुए हैं, गोलोक धाम से यहाँ प्रकट हुए हैं, तो ये प्राकट्य दिवस है कल। इससे पहले हम देखते हैं कि हमारे महान आचार्य श्री नरोत्तम दास ठाकुर का भी तिरुभाव दिवस कार्तिक मास मनाया, अनेक वैष्णवों ने भी इस मास में अपना शरीर छोड़ा है, श्री प्रभुपाद ने भी कार्तिक मास में अपना शरीर छोड़ा। और इस बार तो दिन भी वही पड़ रहा है अंग्रेजी इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार, और तिथि भी वही पड़ रही है 14 नवंबर, लगभग 30 साल के बाद। तो इस प्रकार कई लीलाएं की, गोवर्धन पूजा, गिरिराज जी को धारण किया कृष्ण ने इस महीने, दीपदान का बड़ा महत्व है, नरसिंह पुराण में जो कथा है किस तरह से वो चूजा ने वो दिया दिखाया अज्ञात रूप से भक्ति की कार्तिक मास में, और वो उसको भगवत धाम की प्राप्ति हो गई। तो इस प्रकार इस कार्तिक मास की बहुत महिमा है। कार्तिक मास में कुंड स्नान का बड़ा महत्व है, कार्तिक मास में दीपदान का बड़ा महत्व है, कार्तिक मास में तुलसी देव सेवा का बड़ा महत्व है, तुलसी महारानी की सेवा का बड़ा महत्व है, कार्तिक मास में श्रीमद् भागवत श्रवण करने का, उसका कथा करने का बड़ा महत्व है, कार्तिक मास में परिक्रमा करने का बड़ा महत्व है, कार्तिक मास में मंदिर का उद्घाटन करने का बड़ा महत्व है, विग्रह की स्थापना करना इसका बड़ा महत्व है। तो कार्तिक मास में बहुत कार्यों का महत्व रहता है, और सबसे महत्वपूर्ण दीपदान, दीपदान का बड़ा महत्व है, प्रत्येक दिन दीपदान हम करते हैं तो इससे भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। और ये सब जो भगवान लीलाएं करते हैं इस मास में इसीलिए करते हैं ताकि हम जैसे जीवात्माओं को लाभ पहुंचे और हम लोग उनके ईश्वर में लग जाए। मच्चित मद्गत प्राणा बोधयंता परस्परम कत्यंत शमाम नित्यम तुष्यंति चरम अंत्यचर। भक्तों को आपस में बैठकर कृष्ण कथा करनी चाहिए, यशोगान करना चाहिए, कृष्ण का यशोगान करना चाहिए, उनके यश का गान करना चाहिए, उनके बारे में चर्चा करनी चाहिए, उनकी लीलाओं के बारे में चर्चा करनी चाहिए, नाम रूप गुण लीलाओं की चर्चा करनी चाहिए। और अगर नहीं जानते हैं उन लीलाओं के बारे में तो शास्त्र पढ़े, उन शास्त्रों को पढ़ के चर्चा करें, सब कुछ दिया गया है ग्रंथों में, प्रजल्पा से दूर रहें। तो ये सबसे उत्तम समय है कार्तिक मास, जिसमें हम लोग अपराधों से बचकर कृष्ण कथा का पूरा लाभ उठा सकते हैं। और इस महीने जो लाभ नहीं उठाता है कार्तिक मास का, उसको कभी भी शुद्ध भक्ति प्राप्त नहीं होगी। अगर हम सोचेंगे और महीने जैसे कर रहे थे वैसे ही करना है, कोई खास अंतर नहीं है, जैसे चल रहा है वैसे ही चलना, तो इसका मतलब हम जो है परम दुर्भाग्यशाली है, सौभाग्यशाली नहीं है। यशोगान करना चाहिए, प्रातःकाल उठना, मंगल आरती के समय, ब्रह्म मुहूर्त के समय मंगल आरती करना, प्रातःकाल उठ के स्नान करके ब्रह्म मुहूर्त में मंगल आरती में भाग लेना। जो पास में रहते हैं वो मंदिर आ सकते हैं, जो दूर रहते हैं वो घर में ही मंगल आरती कर सकते हैं, और इस तरह से एक महीने का अभ्यास करके फिर बाद में निरंतर मंगल आरती में आ सकते हैं पूरे साल। तो एक महीना अभ्यास कर सकते हैं हम लोग कार्तिक मास में, पूरे साल नहीं आते तो इस बार जो महीने का लाभ उठाना चाहिए, है ना। ये महीना भी अगर साधारण महीनों की तरह बीत गया तो फिर इसका मतलब क्या है कि हमने इस महीने का कोई महत्व नहीं समझा। लेकिन प्रभुपाद की इतनी कृपा है कि प्रभुपाद ने तो कई ऐसे भक्ति अंग जो है लागू किए हैं हमारे लिए जो कि कार्तिक मास पर इसका महत्व है, जैसे श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण, तुलसी महारानी की पूजा, तुलसी आरती, मंगल आरती में उठना, ये तो हम पूरे साल करते हैं। तो इसलिए भक्तों को तो और ज्यादा लाभ मिलता है जो खासकर इस संस्था से जुड़े हैं। लेकिन बाहर जो लोग हैं जो इस संस्था से नहीं जुड़े हैं, उनके लिए तो ये विशेष नियम है कि पूरे साल आपने कुछ नहीं किया, कम से कम एक महीना तो करो, तो इसलिए ज्यादा लाभ मिलता है, भक्तों को ज्यादा लाभ मिलता है जो इस संस्था से जुड़े हैं। तो इस प्रकार इस कार्तिक मास का बड़ा महत्व है, और ये इसलिए भगवान का हमें इस पर निरंतर गुणगान करना चाहिए। और साथ में ग्रंथों का वितरण, ग्रंथों के वितरण के द्वारा हम सबसे ज्यादा भगवान का यश फैलाते हैं। हर जगह श्रीमद् भगवद गीता यथारूप हो, हर घर में भगवद गीता की जो है प्रतियां प्राप्त हो सबको, सब घर में श्रील प्रभुपाद जी की गीता हो, प्रभुपाद जी के ग्रंथ हो, ऐसा हमें विचार करना चाहिए। यश किसका फैला रहे हैं? प्रभुपाद जी के ग्रंथों का, है ना। अपना यश भी फैलता है जब ग्रंथों का वितरण करते हैं तो तालियां भक्तों के लिए भी बजती हैं। कृष्ण की सेवा में ये बड़ी ही अद्भुत बात है, जब हम कृष्ण की सेवा करते हैं तो भक्तों का भी गुणगान होने लगता है। भक्त भगवान का गुणगान करते हैं और भगवान भक्तों का गुणगान करते हैं, आपस में प्रतियोगिता चलती है। भक्त लोग चाहते नहीं कि उनका गुणगान हो, लेकिन भगवान चाहते हैं कि उनका गुणगान हो, और भक्त चाहता है कि भगवान का गुणगान हो तो वो भी अपना प्रयास करता है। प्रभुपाद ने देखिए पूरे अपने जीवन काल में अपना गुणगान कभी नहीं चाहा, वो तो हमेशा कृष्ण का गुणगान ही कर रहे थे। हमेशा उन्होंने कृष्ण को ही सामने रखा और अपने आप को बहुत दीनहीन माना। इस कारण से प्रभुपाद के बारे में आज सब जानते हैं और प्रभुपाद का यशोगान हो रहा है। 24 घंटे प्रभुपाद जी की पूजा हो रही है पूरे पृथ्वी में। कोई है जिसकी 24 घंटे पूजा होती है? प्रभुपाद की पूजा 24 घंटे हो रही है। तो ये प्रभुपाद से ज्यादा यशस्वी कौन होगा? कोई भी नहीं है। एबे यार घुसल त्रिभुवन, नर्तन दास ठाकुर बोलते हैं गुरु वंदना की आखिरी पंक्ति में, एबे यार घुसुक त्रिभुवन, आपका यश तीनों लोकों में फैला हुआ है। तीनों लोकों में फैला हुआ है, इसको कैसे समझे? कई भक्त लोग जो धाम नहीं जाते हैं, धाम नहीं जा पाते हैं, स्वर्ग लोग जाके अटक जाते हैं, तो स्वर्ग लोग में जाकर भी वो प्रभुपाद का गुणगान कर रहे हैं, क्योंकि वहां से उनको पता चलता है कि हम लोग भी कभी इस खान में थे, हम धाम नहीं जा पाए, है ना। कोई बात नहीं, यहां रहकर भी हम गुरु पूजा कर सकते हैं, यहां रहकर भी हम प्रभुपाद का गुणगान करेंगे। तो स्वर्ग लोक में भी प्रभुपाद का गुणगान हो रहा है, ब्रह्मा जी के लोक में भी प्रभुपाद का गुणगान हो रहा है। प्रभुपाद जी का यश देखकर ब्रह्मा जी नारद जी जैसे महान भक्त जो है वो पृथ्वी लोक में आते हैं प्रभुपाद जी का दर्शन करने के लिए, उनकी कथा को सुनने के लिए। सच बात है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में जब भक्त लोग वहां संकीर्तन कर रहे थे तो फिर प्रभुपाद ने अचानक ऊपर देखा, इमारत के ऊपर, बिल्डिंग के ऊपर, वो मुस्कुराने लगे। तो भक्तों ने पूछा कि प्रभुपाद ऊपर क्यों देख रहे हैं, ऊपर देख के क्यों मुस्कुरा रहे हैं? प्रभुपाद ने कहा, देखो नारद जी, देखो उस बिल्डिंग के ऊपर खड़े हैं और हमें देखकर वो बड़े खुश हो रहे हैं, कि वो सोच रहे हैं कि कैसे ये म्लेच्छ और जो यावन लोग हैं ये लोग कैसे संकीर्तन में भाग ले रहे हैं, और ये देखकर वो बड़े खुश हो रहे हैं, नारद जी बड़े खुश हो रहे हैं। इसी तरह से कॉन्वे हॉल में जब प्रभुपाद ने लेक्चर दिया था और कम लोग आए थे, ज्यादा संख्या में लोग नहीं आए थे, तो प्रभुपाद से बोला, प्रभुपाद हमने बहुत कोशिश की, बहुत प्रयास किया, लेकिन ज्यादा लोग नहीं आ पाए। प्रभुपाद ने कहा, कौन कहता है लोग नहीं आ पाए? ब्रह्मा जी थे, नारद जी थे, आपने नहीं देखा ये सब आए थे? तो प्रभुपाद जी ने उनके लिए सो स्ट्रीट लंदन में ऑल्टर के पास दो आसन रखवाए जो आज भी है। उन्होंने कहा कि ये सब महान जो भक्त आते हैं संकीर्तन में भाग लेने के लिए, तो उनके लिए हमें विशेष आसन रखना चाहिए। तो इस प्रकार प्रभुपाद देख सकते थे, है ना। जो आसन से कोई बड़ी बात नहीं कि प्रभुपाद कैसे देख सकते थे, कई बार लोग सोचते हैं, आश्चर्य करते हैं कि प्रभुपाद कैसे देख पाते थे। अरे जो कृष्ण को देख सकता है वो बाकी क्यों नहीं देख सकता किसी को? वो सबको देख सकता है। जो कृष्ण को देख सकता है वो सबको देख सकता है, ब्रह्मा जी को क्यों नहीं देख सकता, नारद जी को क्यों नहीं देख सकता है? जो कृष्ण को देख सकता है, जो कृष्ण को जानता है वो सब कुछ जानता है, जिसने कृष्ण को देखा है वो सब कुछ देख सकता है। तो ये है यश, असली यश। इसलिए जब रामानंद राय से महाप्रभु ने पूछा कि संसार का सबसे यशस्वी व्यक्ति कौन है, है ना, तो सबसे यशस्वी कौन होता है, तो क्या उत्तर दिया रामानंद राय ने? जो भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, भगवान के जो भक्त हैं वो सबसे यशस्वी होते हैं, उनके बाद सबसे ज्यादा यश होता है। तो भक्त लोग यशस्वी निश्चित रूप से होते हैं, लेकिन यश के पीछे नहीं भागते। यश के पीछे भागना और यशस्वी होना ये दो अलग अलग चीजें हैं। एक तो होता है यश के पीछे भागना, निरंतर दिन रात चिंता करने की कैसे हमारा यशोगान होगा, जो कि भक्तों ठाकुर कहते हैं सबसे बड़ा अनर्थ है, और सभी अनर्थों का मूल कारण है यश कमाने की इच्छा, तो इसको अनर्थ बताया गया है। लेकिन भक्त जो भगवान की निरंतर सेवा करते रहते हैं, गुरु की सेवा करते हैं, स्वतः ही उनका यशोगान होता है, उनको यश के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। भगवान ऐसे भक्तों का, श्री चैतन्य महाप्रभु ऐसे भक्तों का गुणगान करते हैं, है ना। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण जो गुण है भगवान का और भक्तों में भी पाया जाता है, उनके यश 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 उनका जो है फैला हुआ है। अगला भी गुण बिल्कुल लगभग वैसे ही है, लोकप्रिय। जो व्यक्ति जनता को अत्यंत प्रिय होता है वह लोकप्रिय कहलाता है, फेमस उसको कहते हैं, पॉपुलैरिटी। कृष्ण की लोकप्रियता विषय एक कथन श्रीमद् भागवत में मिलता है, जो उनके राजधानी हस्तिनापुर से अपने घर लौटते समय का है। जब कुरुक्षेत्र के युद्ध के समय वह द्वारका से अनुपस्थित थे तो द्वारका के सारे नागरिक अत्यंत खिन्न थे, किंतु जब वह लौट कर आए तो नागरिकों ने उनका हर्षपूर्वक स्वागत किया और कहा, हे प्रभु, जब तक आप इस पुरी में अनुपस्थित थे तब तक हमने अपने दिन अंधकार में बिताए। जिस प्रकार रात के अंधकार में हर क्षण एक कल्प सा लगता है, उसी तरह जब आप चले गए तो हमें हर क्षण लाखों वर्षों की तरह लगा। आपका वियोग हमारे लिए अत्यंत असह है। इस कथन से पता चलता है कि कृष्ण देश भर में कितने लोकप्रिय थे। ऐसी घटना तब घटी जब कृष्ण जी राजा कंस के द्वारा उनकी मृत्यु के लिए आयोजित यज्ञ स्थल में प्रविष्ट हुए। जब उस स्थान में प्रविष्ट हुए तो सारे मुनियों ने जय जयकार की, जय हो जय हो। उस समय कृष्ण बालक थे और समस्त मुनियों ने उन्हें आदर सादर आशीर्वाद दिया। वहां पर उपस्थित देवता भी कृष्ण की स्तुति करने लगे। उपस्थित महिलाओं तथा कुमारियों ने यज्ञशाला के सभी कानों से हर्ष व्यक्त किया। दूसरे शब्दों में, स्थल पर कोई ऐसा ना था जिसमें वह लोकप्रिय ना रहे। तो कृष्ण लोकप्रिय है क्योंकि लोकप्रियता केवल इस भूमंडल में नहीं है बल्कि पूरे ब्रह्मांड में है, अनंत कोटि ब्रह्मांडों में है लोकप्रियता है भगवान। अनंत कोटि ब्रह्मांडों में अनंत कोटि देवतागण, अनंत कोटि जीवात्माएं, अनंत कोटि भक्त भगवान का यशोगान कर रहे हैं, है ना। उनकी लोकप्रियता लोकप्रियता जो है वो अनेक अनेकों ब्रह्मांड में है। किसी की लोकप्रिय होता हो सकती है दिल्ली शहर में, किसी की लोकप्रियता हो सकती है गढ़ी में, किसी की लोकप्रियता हो सकती है भारत में, किसी की लोकप्रियता हो सकती है विश्व स्तर में, लेकिन किसी की लोकप्रियता होती है कि ब्रह्मांड के सब, पूरे ब्रह्मांड में जो लोग सब जानते हैं। हाँ, बड़े बड़े देवताओं की है, ब्रह्मा जी को सब जानते हैं, शिव जी को सब जानते हैं, नारद जी को सब जानते हैं। भगवान के भक्त भी जो है लोकप्रिय हो जाते हैं। भगवान जो है अपनी लोकप्रियता स्वयं नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि अपने भक्तों का भी गुणगान चाहते हैं। तो जिस तरह से भगवान लोकप्रिय हैं उनके भक्त भी लोकप्रिय होते हैं, और इस तरह से अनेकों ब्रह्मांड में इन महाजनों के बारे में चर्चा की जाती है। स्वयंभु, नारद, शंभु, प्रहलाद, भीष्म, जनको, कुमारो, कपिलो, मनु, बलि, वया, सकीर, वयम, बारह महाजन जो बताए गए भागवत में, इनका गुणगान जो है पूरे पृथ्वी में नहीं पूरे ब्रह्मांड में होता है। ये धर्म के अधिकारी हैं। अनेकों ब्रह्मांड में इन महाजनों की चर्चा होती है, इनकी शिक्षाओं की चर्चा होती है, और ये इसलिए क्योंकि इनका संबंध कृष्ण से है। जब तक हमारा संबंध भगवान से रहेगा अपने आप हम देखेंगे हम लोग भी सुरक्षित रहेंगे। यानी कि लोकप्रियता निर्भर करती है वास्तव में कि कितना संबंध है किसका भगवान से। आज कोई व्यक्ति कहता है ये सबसे विश्व का सबसे धनी व्यक्ति हो गया, कभी कल कोई और कहेगा कि ये व्यक्ति सबसे धनी व्यक्ति हो गया, फिर और कोई कहेगा कल और कोई व्यक्ति सबसे धनी व्यक्ति हो गया, है ना। तो हर व्यक्ति जो है किसी ना किसी ऐश्वर्य के पीछे भाग रहा है। ऐश्वर्य से समागरस्य वीरस्य यशसा श्रिया ज्ञान वैराग्य शैव, ये जो छह ऐश्वर्य हैं ये सबको लोकप्रिय बनाते हैं। इन ऐश्वर्यों के कारण ही कोई लोकप्रियता को प्राप्त करता है, और ये सारे ऐश्वर्य कृष्ण के पास है, और कृष्ण के पास तो और भी ऐश्वर्य पाए जाते हैं। प्रेम भक्ति प्रदान करने वाले हैं कृष्ण। कृष्ण अपने ही सौंदर्य से आकर्षित हो जाते हैं और सारे अवतार कृष्ण में शामिल हैं। जितने भी अंश अवतार हैं, अंश विस्तार हैं, 24 एक्सपेंशंस कह लीजिए, तीन पुरुष अवतार कह लीजिए, या जो भी उनके विस्तार हैं, ये सब कृष्ण के भीतर हैं, ये कृष्ण में पाए जाते हैं। तो ये तीन अतिरिक्त ऐश्वर्य कृष्ण में पाए जाते हैं जो अवतारों में भी नहीं है या फिर पुरुष अवतारों में भी नहीं है, केवल कृष्ण के पास, केवल कृष्ण के पास। तो ये तीन अतिरिक्त गुण ऐश्वर्य है कृष्ण के पास छह ऐश्वर्यों के अलावा। तो ये जो इन इसके कारण जो है कृष्ण बड़े लोकप्रिय रहते हैं, और ये घटना बताई जा रही है मथुरा की, जब वहां पर कृष्ण आए थे कंस को मारने के लिए, तो वहां पर जो सभा बुलाई गई थी और हजारों लोग वहां पर एकत्र थे, सारे ब्रजवासी आए थे, कई ऋषि मुनि आए थे और कई प्रकार के लोग वहां एकत्र थे, और कुछ लोग उनका आशीर्वाद दे रहे थे क्योंकि उम्र में वो छोटे थे, कुछ लोग उनका गुणगान कर रहे थे, है ना, और हर भक्त जो है अपनी दृष्टि से भगवान को देख रहा था। तो इस प्रकार से उनकी लोकप्रियता बढ़ी जब उन्होंने कंस का वध किया, है ना। कंस का वध कैसे किया जानते हैं कृष्ण ने? वो आसन में बैठे हुए थे और उनको वहीं से उठाकर नीचे पटक दिया बिना अस्त्र शस्त्र के। जैसे हमने पहले ही बताया था कि कृष्ण ने वृंदावन में और यहां तक कि मथुरा में भी जितने असुरों और राक्षसों को मारा, किसी के ऊपर कोई अस्त्र का उपयोग किया ही नहीं, किसी अस्त्र शस्त्र का उपयोग नहीं किया। इस तरह से भी बता सकते हैं कि कृष्ण परम शक्तिशाली है और इससे भी उनकी लोकप्रियता बढ़ गई, है ना। ये तो कोई अस्त्र शस्त्र का उपयोग भी नहीं करता, ऐसे ही मार देता है, है ना। इसने तो केशी राक्षस को ऐसे मार दिया, मुंह खोला उसने और अंदर हाथ दे दिया, मुंह वो मर गया। बकासुर की चोंच पकड़ी, चोंच फाड़ दिया। अगासुर के अंदर घुसे और अगासुर को भी फाड़ डाला, कहीं भी अस्त्र शस्त्र का उपयोग नहीं किया, इसलिए निरंतर लोग कृष्ण का गुणगान करते थे। यहां तक कि जब देखते माता यशोदा, जब दामोदर लीला से पहले माता यशोदा के बारे में बताया जाता है कि वो दही मलती थी और वो देखती थी कि कृष्ण जो है दूसरे घरों में जाकर जो है क्या करते हैं, दही की चोरी करते हैं, माखन की चोरी करते हैं। उनको लगा कि शायद अन्य गोपियां जो है और स्वादिष्ट मक्खन बना रही हैं, तो फिर माता यशोदा ने सोचा कि स्वयं वो बनाएंगे अब कृष्ण के लिए मक्खन बनाएंगे। तो उन्होंने फिर दही मथना शुरू किया और बताते हैं कि जब वो दही मथती थी तो क्या करती थी कि कृष्ण की लीलाओं का गुणगान करती थी। उन्होंने कई उन्होंने भजन की रचना कर दी कृष्ण की लीलाओं के ऊपर। लोग जो लगभग 3 साल के थे मुश्किल से उस समय, 2.5 या 3 साल के थे, और कितने असुरों को मार चुके थे 2.5 और 3 साल के भीतर। किस किस को मारा था बता सकते हैं आप? पूतना का वध किया था, है ना, फिर तृणावर्त का, शक्टासुर का वध किया था, तृणावर्त का वध किया था, अगासुर का तो बाद में किया, वो तो जब नंदगांव से जब गए थे, है, वृत्तासुर का वध किया था, वृत्तासुर नहीं, वृत्तासुर तो छठे स्कंद में आता है, वो कहां से आता है? वत्सासुर, वो तो बछड़ा है, वो अरिष्टासुर है, उसका वध तो कल करेंगे, कल रात को, अर्धरात्रि में 11:30-12 के करीब जो है श्री कृष्ण ने अरिष्टासुर का वध किया राधाकुंड के प्राकट्य से पहले, इसलिए उस ग्राम का नाम अरिष्ट ग्राम भी पड़ा राधाकुंड का नाम, अरिष्टासुर का वध किया। वो अभी नहीं हो तो बाद में है, वो तो काफी बड़े हो गए समय, वो वत्सासुर है राक्षस, वो वत्सासुर है। तो ये सब जो है कृष्ण ने 3 साल के भीतर इन असुरों और राक्षसों का वध कर दिया, और माता यशोदा इन लीलाओं को देखकर बहुत खुश थी, बहुत प्रसन्न थी और सब उनका गुणगान करते, है ना। यहाँ तक दामोदर लीला भी हुई तो दामोदर लीला के बाद भी वो बड़े लोकप्रिय हो गए, सब उनको दामोदर दामोदर करके बुलाने लगे, लेकिन उनको कृष्ण को अच्छा नहीं लग रहा था, कृष्ण को ऐसा लग रहा था सब उनका मजाक उड़ा रहे हैं कि ये देखो दामोदर है, माता यशोदा ने इसको रस्सी से बांध दिया, है ना, तो सब मजाक उड़ा रहे थे कृष्ण का कि दामोदर है करके। तो इस प्रकार भी लोकप्रियता फैली कृष्ण की। अगला बताया भक्तों के पक्षधर। भक्तों के पक्षधर का मतलब है कि भक्तों का पक्ष लेते हैं भगवान, है ना, पक्षपाती है कृष्ण। एक बार बोलते हैं कि भगवान समदर्शी है, भागवत का जो सप्तम स्कंद है, तो जब सप्तम स्कंद प्रारंभ होता है वहां पर जो अध्याय का शीर्षक दिया है भगवान समदर्शी है, यहां पर लिखा है भक्तों के पक्षधर है, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन हो गया ना। यद्यपि कृष्ण भगवान है और किसी का पक्षपात नहीं करते, किंतु भगवद गीता में कहा गया है कि वे उन भक्तों के प्रति विशेष प्रीति रखते हैं जो प्रेम पूर्वक उनके नाम की पूजा करते हैं। जब कृष्ण इस धरा नाम में थे तो एक भक्त ने अपनी भावना इस प्रकार व्यक्त की थी, हे प्रभु, यदि आप इस लोक में अवतीर्ण ना हुए होते तो भक्तों के कार्यकलापों के विरुद्ध असुर एवं नास्तिक अवश्य ही उपद्रव खड़ा करते रहते। आपके अवतीर्ण होने से जितना विनाश रुका है उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। श्री कृष्ण अपने प्राकट्य के प्रारंभ से ही सारे असुरों के घोर शत्रु थे। यद्यपि असुरों के प्रति ये शत्रुता भक्त के साथ उनकी मैत्री के समतुल्य है। ऐसा इसलिए क्योंकि कृष्ण के हाथों मृत्यु पाने वाले हर असुर को मोक्ष मिलता है, लेकिन हर असुर को भगवत धाम की प्राप्ति नहीं होती है, है ना। ये जो विशेष जो अवसर है वो भक्तों को भगवान प्रदान करते हैं। भक्तों को ये विशेष उपलब्धि प्राप्त होती है। एकाध असुरों को छोड़कर जो अधिकांश असुर हैं वो ब्रह्म ज्योति में लीन होते हैं। तो कहने का अर्थ ये कि भक्तों के लिए हमेशा भगवान पक्ष लेते हैं और भक्तों की हमेशा रक्षा करते हैं। अर्जुन का हमेशा पक्ष लिया, महाभारत के युद्ध में भी हम देखते हैं, कुरुक्षेत्र में भी। आप क्यों बात करें, कुछ भक्तों का पक्ष लिया और यहां तक कि ऐसा लग रहा था कि धोखा दिया जा रहा है कौरवों को, फिर भी भगवान ने ऐसा किया। क्यों? अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए। ऐसे कर्ण जो है अपने पहियों को लेकर, पहिया फंस गया, कर्ण के रथ का पहिया फंस गया है ना, लेकिन कृष्ण चाहते तो बोल सकते थे नहीं नहीं इसको पहले पहिया निकालें तो फिर हम युद्ध करेंगे, ये धर्म युद्ध है, है ना। अब इसके पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है, ये निहत्ता है, इसको मारना जो है वो धर्म के विरुद्ध होगा, ऐसा नहीं करो अर्जुन। नहीं, कृष्ण क्या बोला, चला दो बाण, ये मौका है। तो भगवान जो है अपने भक्तों का पक्ष लेते हैं, किसी को अच्छा लगे या ना लगे। आपने क्यों कौरवों का साथ दिया, है ना। आप अच्छे हो सकते हैं लेकिन क्योंकि आपने कौरवों का साथ दिया इसलिए आपको भी उनमें गिना जाएगा। आप बहुत अच्छे हो सकते हैं लेकिन अगर आपने किसी चोर को आश्रय दिया तो आपको भी चोर बोला जाएगा, है ना। ये तो इंडियन लॉ के हिसाब से भी ऐसा है, ये तो वास्तव में भगवान का नियम है, भगवान का कानून है ये भी। तो भगवान के जो आश्रय में आता है, भगवान का आश्रय लेता है, भगवान किसी विशेष रक्षा करते हैं। राजा अपने परिवार की विशेष रक्षा करता है। राजा जो होता है वो अपने प्रजा की विशेष रक्षा करता है, है ना। हालांकि प्रजा के प्रति समदर्शी होता है लेकिन जब जहां तक अपने परिवार की बात आ जाती है तो वहां पर विशेष राजा जो है प्रेम प्रकट करता है, जो कि राजा के लिए स्वाभाविक है। लेकिन भगवान राम की हमने लीला में देखा तो वहां तो उन्होंने सीता जी को भी नहीं छोड़ा, है ना। क्योंकि वो लोग क्या चर्चा कर रहे थे, वो धोबी क्या चर्चा कर रहा था, ये सीता, मैं तो राम नहीं हूं जो सीता जी को स्वीकार कर लिया, जिन्होंने जो रावण के पास रहकर आई है, है ना। ये तो एक दिन जो है एक रात यहां पर घर पे नहीं थी, हम इसको कैसे स्वीकार करें। तो भगवान ने सुन लिया क्योंकि गुप्त रूप में भगवान जाते थे अयोध्या में और सुनना चाहते थे कि लोग उनके बारे में क्या बात कर रहे हैं, है ना। राजा होने के नाते उनका कर्तव्य था कि लोगों के अंदर जो है इस प्रकार की दुर्भावना ना आए, कोई शंका ना हो, उनके अंदर कोई शक ना हो, क्योंकि उनकी श्रद्धा कम हो सकती है। इस कारण से भगवान जाते थे और घरों के बाहर रहकर छुप छुप कर वो सुनते थे कि लोग क्या बात कर रहे हैं। तो ये तो भगवान राम मर्यादा का पालन कर रहे थे इसलिए उन्होंने मर्यादा रखी। लेकिन जो कृष्ण है, स्वयं कृष्ण है, उस मर्यादा का भी भंग करते हैं अपने भक्तों के लिए, है ना। इसलिए उन्होंने जो वचन लिया कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, फिर भी उन्होंने उठाया, रथ का पहिया तो उठा लिया, शस्त्र नहीं उठाया, अस्त्र तो उठा लिया, है ना। किसको मारने के लिए दौड़े थे, भीष्म पितामह को मारने के लिए दौड़े थे। तो भगवान तो पक्षधर है अपने भक्तों के लिए। खासकर भगवान कृष्ण जो है अपनी लीलाओं में बात प्रकट करते हैं कि भक्तों का विशेष वो ध्यान रखते हैं। और कोई लीला को याद है जैसे हम देखते हैं कि भगवान अपने भक्तों का विशेष ध्यान रखते हैं, कोई बता सकता है? महाप्रभु की लीला में कोई ऐसा प्रसंग आता है, सोचिए। जगाई मदाई हाँ, वो तो भक्तों, नित्यानंद प्रभु ठीक बात है, वो भी नहीं, वो नित्यानंद प्रभु के जगह पे कोई भी होता तो शायद महाप्रभु सहायता करते, कोई भी भक्त होता। तो कहने का मतलब है कि भक्तों का विशेष ध्यान रखते हैं। चांद का जी का क्या बता रहे हैं, हाँ, चांदकाजी ने अपने सैनिकों को भेजा मृदंग तोड़ने के लिए, तो महाप्रभु ने क्या किया, 100,000 भक्तों को इकट्ठा कर लिया, 100,000 लोगों को इकट्ठा कर लिया, मशाल लेकर चांदकाजी के घर पे चले संकीर्तन करते हुए। तो इस प्रकार की कई घटनाएं हैं जिसमें भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए अपना पक्ष, भक्तों का पक्ष लेते हैं। और महाभारत का युद्ध होने से पहले क्या किया था भगवान ने, भगवान क्या बनकर आए थे हस्तिनापुर, दूध बनकर आए थे, किसका पक्ष ले रहे थे, पांडवों का पक्ष ले रहे थे, है ना, वो कौरवों के लिए नहीं आए थे, वो पांडवों का पक्ष ले रहे थे कि आप केवल कम से कम उनको 5 गांव तो दे दो, है ना, 5 गांव तो दे दो। परीक्षित महाराज की रक्षा की कब, गर्भ में रक्षा की। ये तो हम रक्षा की बात कर रहे हैं, हम पक्ष की बात कर रहे हैं। देखिए रक्षा और पक्ष लेना ये थोड़ा सा अंतर है, रक्षा तो भगवान करेंगे करेंगे भक्तों की, लेकिन पक्ष लेना थोड़ा अंतर होता है। ऐसा भी हमने बताया कि जैसे कर्ण के रथ का पहिया जो है फंस रहा था, है ना, उनको मारना ही अधर्म है देखा जाए तो, है ना, अगर आप देखें नीति शास्त्र के हिसाब से और अर्थशास्त्र भी कह सकते हैं, अर्थशास्त्र कहें, हाँ अर्थशास्त्र, नहीं नहीं अर्थशास्त्र के हिसाब से भी ये देखा जाए ठीक नहीं है, है ना, ये विरुद्ध है। और ये तो धर्म युद्ध था, है ना, और ऐसे युद्ध में तो क्या है कि अगर कोई निहत्ता लड़ रहा है तो उसको तो मारना नहीं चाहिए, ये तो नियम है धर्म युद्ध का। आजकल जैसे थोड़ा ना कि रातों रात बॉम्ब डाल दे, सब सो रहे हैं और बॉम्ब डाल रहे हैं ऊपर से, उस समय तो ऐसा नहीं था। उस समय अगर सूर्यास्त के बाद और अगर कोई निहत्ता होता था तो उसको नहीं मारते थे, लेकिन भगवान ने कहा नहीं मारो। हाँ ऐसा कोई उदाहरण है, हाँ बताइए क्या किया था बाली का वध करने के लिए, किसकी रक्षा करने के लिए, सुग्रीव की रक्षा करने के लिए बाली का वध किया। कैसे वध किया, पेड़ के पीछे छुप के, है ना। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भगवान अपने भक्तों का पक्ष लेते हैं, इसको कहते हैं पक्ष लेना। और ये भी एक उदाहरण है, अर्जुन का पक्ष लिया था जब उन्होंने सुभद्रा जी का अपहरण किया था, और नहीं वो पक्षपात लेना नहीं हुआ ना, वो तो रक्षा हुआ, पक्षपात समझ गए ना, पक्षपात, पक्षपात पक्ष लेना किसी का, पक्ष लेने का मतलब ही होता है कि लगता है इसमें कुछ गड़बड़ है, क्यों पक्ष ले रहे हैं, पक्ष लेने का मतलब ये है। किसको, किसको मारने के लिए, क्या कैसे बताया था, जान को दिखाया था कि सयुज यहाँ पर जो है शक्ति नहीं है, जान में शक्ति नहीं है, है ना। दुर्योधन जो है वस्त्रहीन होकर आ रहे थे किसके पास, गांधारी के पास, कि गांधारी जब उनको अपना आँख खोलेंगी और गांधारी उनको देखेंगी, नग्न देखेंगी तो क्या होगा, पूरे शरीर उनका वज्र के समान बन जाएगा और कोई उनको नहीं मार पाएगा। तो उन्होंने क्या किया, लेकिन अपने वस्त्र पहने, कुछ हाँ केले के पत्ते से उन्होंने वस्त्र पहने, अर्ध वस्त्र पहने, तो इस कारण से क्या हुआ, वो शक्ति पूरे शरीर में नहीं मिली।
भगवान आए थे ना, हाँ,
तो ये कृष्ण जानते थे इस बात को, उन्होंने देखा इस बात को, सुन लिया अच्छी तरह से। तो जब युद्ध हुआ इनका भीम और दुर्योधन का, तो भगवान ने फिर इशारा किया कि यहाँ पर शक्ति है, क्योंकि वास्तव में दुर्योधन बहुत तेजी से प्रहार कर रहे थे भीम के ऊपर, और भीम लगभग जो है अधमरे से हो गए थे, इतना मार दिया था, और जो भी वो मौका मिलता उनको मारने का तो उनको ऐसा लगता कि लोहे के ऊपर मार रहे हैं, है ना। तो जैसे ही भगवान ने इशारा किया तो फिर जांघ पर उन्होंने आक्रमण किया और इस तरह से दुर्योधन का बल हुआ। जरासन की लड़ाई में भी क्या किया था, जरासन के साथ जब युद्ध हो रहा था वहां पर भी बहुत आक्रमण हुआ था, किसका आक्रमण हुआ था, भीम का, और जरासन का युद्ध हुआ था, तो क्या दिखाया था उन्होंने, हाँ पत्ते को दिखाया था उन्होंने, फाड़ के दिखाया था कि ऐसे फेंक दो, है ना। तो इस प्रकार इसको कहते हैं पक्ष लेना, है ना, इसको कहते हैं पक्ष लेना। देखने में लगता है कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन भगवान अपने भक्तों के हितैषी हैं, भक्तों की रक्षा करते हैं, भक्तों का पक्ष लेते हैं, हमें अच्छा लगे या ना लगे, है ना। और इस कारण से क्योंकि भक्त जो है वो कृष्ण के आश्रय में रहना चाहते हैं, महात्मानास्तु माम पार्थ देवीम प्रकृति माश्रिता, इस कारण से आप सूर्य के नीचे जाएंगे तो आपको ज्यादा रोशनी मिलेगी, है ना। आप कमरे में बैठे रहेंगे सारी खिड़कियां बंद करके तो बोलेंगे सूर्य पक्षपात ले रहा है। सूर्य को कैसे दोष दे सकते हैं आप, सूर्य देखो कितना पक्ष लेता है, वहां रोशनी फैला रहा है या कमरे में रोशनी आ ही नहीं रही। आपने काला शीशा लगाया, पर्दा भी लगाया हुआ है, कमरे के अंदर बैठे हैं, है ना, और ये लाइट जलाई हुई है, इस सूरज की रोशनी नहीं आ रही है, सूरज को दोष आप दे रहे हैं। तो भगवान जो है सबके वास्तव में सुंदरशी हैं, जो उनका आश्रय लेते हैं उनके ऊपर विशेष कृपा होती है। समस्त स्त्रियों के लिए अतीव आकर्षक, जिस व्यक्ति में विशेष गुण होते हैं वे स्त्रियों के लिए तुरंत परम आकर्षक बन जाते हैं। एक भक्त ने द्वारका की रानियों के विषय में यह वक्तव्य दिया है, भला मैं द्वारका की उन रानियों की महिमा का वर्णन कैसे कर सकता हूँ जो भगवान की सेवा में लगी हुई हैं। भगवान इतने महान हैं कि नारद जैसे सभी महान ऋषि उनके नाम के जप मात्र से दिव्य आनंद भोग सकते हैं। अतः उन रानियों के विषय में क्या कहा जाए जो प्रतिक्षण भगवान का दर्शन और उनकी सेवा करती थी। द्वारका में कृष्ण के 16,108 रानियां थी और उनमें से हर रानी कृष्ण के प्रति उसी प्रकार आकर्षित थी जिस प्रकार लोहा चुंबक के प्रति आकर्षित होता है। एक भक्त कहता है, हे प्रभु आप चुंबक की तरह हैं और व्रज की सारी बालाएं लोहे के समान हैं। आप जिस ओर जाते हैं वह चुंबक शक्ति से आकर्षित लोहे की तरह आपकी ओर आ जाते हैं। तो अर्धरात्रि में क्या हुआ, शरद पूर्णिमा के दिन जितने वर्ष की गोपियां थी वो अपने अपने घरों में थी, लेकिन सब अपने घरों को छोड़कर अर्धरात्रि में कृष्ण से मिलने के लिए कहाँ पहुंची, बंसीवट में पहुंची। घर के कोई भी कार्य में लगे हो, जब रासलीला का समय आता है या कृष्ण बंसी बजाते हैं तो कोई भी कार्य में लगे हो, जो ब्रज की गोपियां वो छोड़कर सारे कार्य को छोड़कर वो बड़ी तेजी से भागती हैं, उसी हाल में वो कृष्ण से मिलने के लिए चले जाते हैं। तो कृष्ण सर्व आकर्षक है, जैसे वो वेणु वादन करते हैं, वेणु की आवाज सुनाई जाती है, वंशी की आवाज सुनते हैं, तो सारी गोपियां जो है अपने ब्रज में जितनी भी गोपियां हैं वो सब गोपियां जो है अपने घरों को छोड़कर वो अपने परिवार को छोड़कर कृष्ण मिलने चली जाती हैं। तो कृष्ण जो है यहाँ पर लिखा है स्त्रियों के लिए अतीव आकर्षक है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कृष्ण जो है महारास करते हैं। वास्तव में देखा जाए तो कृष्ण ही असली एक पुरुष है, एकमात्र भोक्ता हुआ है ना। भोक्ताराम यगत वसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञातवान शांति मिलती। तो देखा जाए प्रकृति यानी कि स्त्री का मतलब है प्रकृति और पुरुष, भगवान एकमात्र पुरुष हैं और वो एकमात्र भोक्ता है, और आध्यात्मिक जगत में देखा जाए तो केवल वही पुरुष है और बाकी सब क्या है, प्रकृति है। वह पुरुष रूप में जरूर होंगे भक्त लोग, लेकिन वो उनको भी प्रकृति कहा गया है क्योंकि वो भी भगवान के लिए भोग्य है, भगवान को आनंद प्रदान करने वाले हैं और स्वयं इंद्र तर्पण का वो कभी भी ख्याल नहीं रखते। इस प्रकार हर जीव जो है भगवान की सेवा में लग सकता है और आकर्षित हो सकता है। सर्व आराध्य, जो व्यक्ति सारे मनुष्य एवं देवताओं के द्वारा आदरित एवं पूजित होता है वह सर्व आराध्य कहलाता है। कृष्ण शिवजी तथा ब्रह्मा समेत सारे जीवों के द्वारा आराध्य तो है ही, वह बलदेव तथा शेष जैसे विष्णु के अंशों द्वारा भी आराध्य है। बलदेव कृष्ण के स्वांश हैं, फिर भी वह कृष्ण के आराध्य मानते हैं। जब कृष्ण महाराज युधिष्ठिर द्वारा आयोजित राजसूय यज्ञ में प्रकट हुए तो कृष्ण वहां पर उपस्थित महर्षियों तथा देवताओं समेत हरेक के लिए आकर्षण के केंद्र बन गए और हरेक ने उनका अभिवादन किया, और उन्हीं को वास्तव में पूजनीय बताया गया कि हमें तो इनकी ही पूजा करनी चाहिए। अग्र पूजा किसकी की जाए, सब लोग सोचने लगे, तो अंत में निष्कर्ष क्या निकला, केवल भगवान कृष्ण ही आराधनीय है, वही पूजनीय है, उनकी हमें पूजा करनी चाहिए। तो शिशुपाल ने तब कुछ नहीं बोला, लेकिन जैसे जैसे पूजा हो गई तो शिशुपाल को फिर गुस्सा आ गया, तब वो चिल्लाने लग गया एकदम से, तब उसने गालियां देनी शुरू कर दी, है ना। तो शिशुपाल जैसे लोग जो है संसार में वो कभी नहीं चाहेंगे कि कृष्ण की पूजा हो, उनकी आराधना हो, और हमेशा भगवान से द्वेष करेंगे। इसे भगवान गीता में कहते हैं, जो मुझसे द्वेष करते हैं, जो तपस्या नहीं करते हैं और जो इस ज्ञान को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं उनको इसकी महिमा में सुनाओ, क्योंकि वो लोग क्या करेंगे, अपराध करेंगे। भगवान को अपने बारे में चिंता नहीं है, लेकिन भगवान को चिंता है कि ऐसे लोग भक्तों के प्रति अपराध करेंगे। भक्त लोग जब ग्रंथों का वितरण करेंगे तो भक्तों को दुख पहुंचाएंगे ऐसे लोग, तो भगवान ये चाहते नहीं है, इस कारण से भगवान ने मना किया है। कई बार लोग पूछते हैं कि पहले श्लोक में तो भगवान ने मना किया है, फिर क्यों आप गीता दे रहे हो? भगवान तो कह रहे हैं कि यह इदम परमम हुयम मद भक्तेषु अभिदास्यति, कि भक्तों को यदि विज्ञान देना चाहिए। और सब पहले श्लोक में बताया जो न तपस्वी है और जो ईर्ष्या करते हैं, जो नास्तिक है, उनको ये कभी महिमा मत बताओ, और आप लोग तो भगवद गीता बांट रहे हो। तो भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो इसलिए कह रहे हैं कि भगवान नहीं चाहते हैं कि लोग भक्तों का अपमान करें, भक्तों के प्रति अपराध करें। भगवान को अपनी चिंता नहीं है, तो इसलिए इस कारण से भगवान ने मना किया। लेकिन भक्त कहते हैं नो प्रॉब्लम, हमारे प्रति अपराध हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपके ग्रंथों का अवतरण करेंगे। हमें अपने मान की चिंता नहीं है, हम तो केवल चाहते हैं कि कृष्ण का यशोगान हो, और प्रचार ग्रंथों का वितरण करना जो है सबसे उत्तम तरीका है भगवान की यशोगान करने का। और इसलिए क्या होता है, इस माध्यम से भगवान सर्व आराध्य हो जाते हैं जब सब घरों में भगवद गीता पहुंच जाती है, प्रभुपाद जी की पुस्तकें पहुंच जाती है। प्रभुपाद जी की जब पुस्तकें पहुंचेंगी तो धीरे धीरे क्या होगा, जब ऐसे लोग प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ेंगे तो कृष्ण उनके लिए आराधनीय हो जाएंगे, है कि नहीं? सब जो है कृष्ण की पूजा करने लगेंगे, सब लोग कृष्ण का नाम लेने लगेंगे। इस कारण से ग्रंथों का वितरण करना अति आवश्यक है। इसलिए आप सब लग जाइए इस बार बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन में, है ना? इस बार कार्तिक के मास में हम लोग ग्रंथों का वितरण शुरू कर रहे हैं, बहुत शुभ है, बहुत लाभकारी होगा, बहुत अधिक लाभ मिलेगा ग्रंथों का वितरण अगर आप करेंगे। केवल 2 लाख गीता आपने बांटनी है इस बार, तो अभी से आप लोग योजना बनाइए कैसे इन ग्रंथों का वितरण करना है। तो इसलिए सर्व आराध्य है ब्रह्मा जी और महादेव शिव शंभू, ये सब जो है कृष्ण का गुणगान कर रहे हैं अपने अपने लोकों में। देवताओं में कोई समस्या नहीं है, ये मायावाद जो है केवल पृथ्वी में है, आप जानते हैं, शायद आपको नहीं पता, मायावाद जो दर्शन है केवल पृथ्वी लोक में है, स्वर्ग लोक में कोई मायावाद फिलोसफी नहीं है। वहां देवता लोग स्पष्ट रूप से जानते हैं कि कृष्ण ही परम भगवान है, ब्रह्मा जी हो, शिव जी हो, इंद्र हो, सब लोग जानते हैं। लेकिन भगवान जब अपनी लीलाएं करना चाहते हैं और लीलाओं को संपन्न करना चाहते हैं तो इन देवताओं को भी भ्रमित करते हैं। लेकिन ये देवता लोग स्पष्ट रूप से जानते हैं कि कृष्ण कौन है, और इसलिए अनंत कोटि देवतागण जो हैं वो भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उनका यशोगान करते रहते हैं। नहीं तो कैसे संभव है कि पूरा ब्रह्मांड जो है इतने सुचारू रूप से चल रहा है अगर ये लोग नहीं जानते कि कृष्ण कौन है? अगर ये लोग भी अपने आप को भगवान माने लगेंगे तो स्वर्ग लोग में हलचल मच जाएंगे, सारे ग्रहों में झगड़ा हो जाएगा, है ना? मैं कृष्ण हूं, तुम भी कृष्ण हो, मैं भी कृष्ण हूं, और पता चला कि वहां पर लड़ाई चल रही है ऊपर, है ना? नक्षत्र आपस में टकरा रहे हैं, ग्रह आपस में टकरा रहे हैं, तो हमारा तो हरिबोल हो जाएगा। पृथ्वी लोक में जो लोग रह रहे हैं तो हालत खराब हो जाएगी अगर ग्रह आपस में टकराते रहे, है कि नहीं? तो ये सब कोई संभाल रहा है ना? तो देवता लोग अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभा रहे हैं। और क्यों निभा रहे हैं देवता लोग? ये स्याद या भ्रमति संवृत काल चक्रो, है ना? किसके लिए बोला गया है? सूर्य देव के लिए बोला गया है, सूर्य भगवान के लिए बोला गया है। यस्या गया सूर्य देव, यस्या गया भ्रमति संवृत काल चक्रो, जिनकी आज्ञा से ये काल और रथ पर आरूढ़ होकर चल रहा, भ्रमण कर रहा है सूर्य, है ना? किनकी आज्ञा से? भगवान कृष्ण की आज्ञा से। भयभीत है सूर्य भी, ये देवता लोग भयभीत है, इंद्र वरुण ये सब भयभीत होकर भगवान की पूजा कर रहे हैं, उनकी आराधना कर रहे हैं। जैसे आप देखिए सागर, देखिए समुद्र, देखिए इतना विशाल सागर, लेकिन एक स्थान के बाद जो है उस सीमा को पार नहीं करता है, ना? लहरें उठती है, बड़ी तेज तेज लहरें उठती है, लेकिन एक स्थान के बाद वो लहरें आगे पहुंचकर फिर से वापस लौट जाती है। क्या कारण है? कौन इसको कंट्रोल कर रहा है? क्यों नहीं पानी आपके शहर में आता है? बंबई जैसा बड़ा शहर है, क्यों समुद्र का पानी बंबई में नहीं आ जाता? अगर मुंबई में समुद्र का पानी आ जाए तो एक मिनट में जो है सारा मुंबई डूब जाएगा, डूबेगा कि नहीं? समुद्र का पानी पर्याप्त है ना मुंबई को डुबाने के लिए, लेकिन फिर भी वो पानी आगे नहीं आता है, तो कोई तो उसको नियंत्रित कर रहा है। इसलिए वरुण देव हो, वायु हो, या फिर अनेकों देवता हो, ये सब भगवान की अध्यक्षता में कार्य कर रहे हैं और इन सबके लिए आराधनीय है। शास्त्रों में लिखा है कि वास्तव में केवल 33 ही देवी देवता है, 33 करोड़ नहीं है, 33 करोड़ जो संख्या बताई गई है, ये वास्तव में इन 33 देवी देवताओं के ही जो है एजेंट्स हैं, तो उनको भी देवता का दर्जा दे दिया जाता कई बार, लेकिन वास्तव में मुख्य रूप से जो देवता है या देवी देवता है वो केवल 33 ही है, प्रिंसिपल देवी गॉड्स और देवी गॉड्स। सुनामी आ जाती है तो प्रकृति विरोध कर रही है ना, जब हम लोग दुष्ट हो जाते हैं और हम लोग प्रकृति के नियम को तोड़ते हैं तो सुनामी क्या बहुत कुछ आएगा, भूचाल आएगा, महाप्रलय आएगा, पूरा ब्रह्मांड ध्वस्त हो जाएगा, है ना। सुनामी क्या चीज है, असली सुनामी जब आएगा तो महाप्रलय होगा, जो केवल ब्रह्मा जी सहन कर सकते हैं सिर्फ, है ना। ब्रह्मा जी के सामने सुनामी तो था और क्या था, जब वो कमल के फूल के ऊपर बैठे थे तो सामने सुनामी चल रहा था, है ना। महाप्रलय में क्या देखा, बड़ी बड़ी लहरें जो उठ रही हैं, है ना, सामने लहरें उठ रही हैं और भयावह स्थिति है, लेकिन ब्रह्मा जी के बारे में लिखा है कि उनके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ रहा था क्योंकि वो बहुत शक्तिशाली थे, भगवान के शुद्ध भक्त थे। इस कारण से हम लोग सुनामी देखने से हम बड़ी तेजी से भागेंगे, है कि नहीं, बचाने के लिए अपने आप को, लेकिन ब्रह्मा जी भयभीत नहीं हुए क्योंकि वो जानते थे वो किसकी पूजा कर रहे हैं, किसकी संरक्षण, किसकी संरक्षण में है। एक मैं पहले पूरा कर लेता हूँ उसके बाद। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये मायावाद दर्शन जो है वो केवल पृथ्वी में है, क्योंकि ये विषय आज्ञा दी थी शिव जी को भगवान ने कि आप इस मायावाद दर्शन का प्रचार करें इस पृथ्वी लोक में। किसके किस दर्शन को समाप्त करने के लिए, बौद्ध धर्म शून्यवाद को समाप्त करने के लिए इस प्रकार जो है इस मायावाद दर्शन को प्रस्तुत किया श्री पाद शंकराचार्य ने। तो कहने का अर्थ यह है, लेकिन मायावादी जो दार्शनिक है ये भगवान की आराधना नहीं करते हैं, है ना, ये भगवान के रूप का खंडन करते हैं, तो भगवान को कैसा लगता है कि कोई वज्र से उनके ऊपर प्रहार कर रहा है जब कोई मायावाद भाष्य बोलता है, तो इसलिए वो कभी आराधना नहीं कर सकते। हालांकि उनको पंच उपासक कहा गया है, 5 जो विग्रह है उनकी पूजा करते हैं। आप जानते हैं कौन कौन से विग्रह हैं, सूर्य और विष्णु और गणेश और शिवजी, दुर्गा और सूर्यदेव, 5। तो ये 5 विग्रह इनकी उपासना करते हैं और जब संन्यास ग्रहण कर लेते हैं स्वयं नारायण बन जाते हैं, पूजा बंद हो जाती है। मतलब उन विग्रहों की पूजा कर रहे हैं किस उद्देश्य से, स्वयं नारायण बनने के लिए, है ना, कि वो साधन उन्होंने अपनाया है नारायण बनने के लिए। जब वो साध्य की प्राप्ति हो जाती है तो इन देवताओं की क्या आवश्यकता है, हटाऊंगो हमें उनमें कोई अंतर नहीं है, या है भी अगर पूजा वो जारी भी रखते हैं तो इसी भावना से जारी रखते हैं कि इनमें और मुझे कोई अंतर नहीं है, है ना। आप उधर खड़े होकर आप आराध्य हैं, मैं इधर खड़े होकर मैं आराध्य हूं, है ना। जैसे कि वो स्वरूप दामोदर के पास एक कवि आया, है ना, उसने क्या बोला कि वास्तव में वो तो अचल है, है ना, वो तो जड़ है, जो जड़ जगन्नाथ है और आप क्या चर जगन्नाथ है, ऐसा कुछ बोला था ना बंगाली कवि ने स्वरूप दामोदर को, तो वो सब तालियां बजाने लगे, वाह क्या बात बोल रहे, स्वरूप दामोदर को बड़ा गुस्सा आया, है ना, एक गलती से मत ले जाना अपना ये भाष्य अपने कविता महाप्रभु के पास, दोबारा मुंह मत दिखाना, जाओ भागवत का अध्ययन करो किसी भाष्य के पास जाके, हाँ। तो इस प्रकार ये मायावादी कभी भी आराधना या पूजा नहीं कर सकते हैं, लेकिन वैष्णों के लिए भक्तों के लिए सर्व आराधनीय है कृष्ण, और पूरे ब्रह्मांड में अनेकानेक भक्त जो है भगवान का निरंतर गुणगान करते रहते हैं। ब्रह्मा जी के लोक में ब्रह्मा जी यज्ञ करवाते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को बुलाकर और शुद्ध सामग्री के द्वारा वहां महापुरुष, वहां पर भगवान को महापुरुष के रूप से जाना जाता है, जिनके हजारों हाथ हैं हजारों मुख हैं, उनकी पूजा करते हैं आराधना करते हैं, और शिव जी भी भगवान शंकरशन का ध्यान लगाते हैं चतुर्भुज रूप में जो है और निरंतर उनके नाम लेते हैं, और भक्तों ठाकुर क्या बोलते हैं, ब्रह्मा बोले चतुर्मुखे कृष्ण कृष्ण हरे हरे महादेव पंचमुखे राम राम हरे हरे, ये भक्तों ठाकुर ने लिखा है। तो ब्रह्मा जी क्या करते हैं, चतुर्मुखी ब्रह्मा जो है वो कृष्ण कृष्ण कर रहे हैं और शिव जी जो पंचमुखी है वो राम राम कर रहे हैं, तो ये देवी देवता भी जो है भगवान का निरंतर गुणगान करते हैं, और जहां जहां इनका गुणगान होता है ये देवी देवता भी वहां पर उस गुणगान में भाग लेना चाहते हैं, है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब देखिए पुराणों में भी कथा है, प्रसंग आता है जहां पे शिव जी ने भगवान से वरदान मांगा, क्या वरदान मांगा, भगवान ने वरदान ये मांगा, जहां जहां आपकी लीला स्थलियां हैं, जहां जहां आपका मंदिर है, निकट में मुझे भी स्थान मिले रहने। ये विशेष वरदान जो है किससे मांगा? शिव जी ने, महादेव ने मांगा। इसलिए आप देखेंगे जहां पर भी भगवान का मंदिर होगा, राधा कृष्ण का मंदिर होगा, विष्णु का मंदिर होगा, पास में वहां शिव जी का मंदिर जरूर होगा। इस राधा पार्षद मंदिर के पीछे ही शिव जी बैठे हुए है ना, अब उनको क्षेत्रपाल कहते हैं, इस इलाके के क्षेत्रपाल है संतनगर के, वो संतनगर ईश्वर विलास के क्षेत्रपाल है महादेव, पीछे बैठे हैं और थोड़ी ऊंचाई में बैठे हैं और वहां से गार्ड कर रहे हैं और देख रहे हैं कोई वहां पर उल्टा सीधा आदमी तो नहीं घुस रहा है मंदिर में, है ना। तो शिव जी महादेव और क्षेत्रपाल के रूप में है इस जगह। इसी तरह से हर मंदिर में आप देखेंगे, कहीं भी आप चले जाइए, जहां कहीं भी राधा कृष्ण का मंदिर होगा वहां पर शिव जी का मंदिर निश्चित रूप से होगा पास में। धाम में चले जाइए, धाम में तो चारों दिशाओं से शिव जी ब्रज को, ब्रज की रक्षा कर रहे हैं, नवदीप की रक्षा कर रहे हैं, वहां पर भी महादेव हैं हर जगह। हाँ, हा, नाम बहुत सारे हैं तो, लेकिन रक्षा कर रहे हैं यहाँ पर, उद्देश्य हमारा कहने का मतलब है, नाम की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ, हम कह रहे हैं कि वो सब रक्षा कर रहे हैं, इस तरह से सब पूजा कर रहे हैं, कृष्ण का निरंतर गुणगान कर रहे हैं। और अनंत शेष हम देखते हैं हजारों मुखों से वो निरंतर गुणगान किए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी वो गुणगान पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो सर्व आराध्य है, सर्व संपन्न कृष्ण, समस्त ऐश्वर्य बल धन यश सौंदर्य ज्ञान एवं त्याग से युक्त है। जब कृष्ण द्वारका में वर्तमान थे तो उनके यदुकुल में कुल मिलाकर 5600,000 व्यक्ति थे। हाँ, ये सभी लोग कृष्ण के अत्यंत आज्ञाकारी एवं विश्वास पात्र थे। इन लोगों में के रहने के लिए 9,00,000 बड़ी बड़ी इमारतें थी, 9,00,000 बड़ी बड़ी इमारतें, और ये सारे लोग कृष्ण को सर्वाधिक आराध्य मानते थे। भगवान कृष्ण के ऐश्वर्य को देखकर चकित थे, इंद्र भी बड़े चकित थे, और तो और कृष्ण ने क्या किया, सत्यभामा जी के लिए वहां जाकर पारिजात फूल भी लेकर आ गए स्वर्गलोक से, है ना। इंद्र ने झगड़ा कर लिया, वो जो पारिजात फूल होता है ये इतना ज्यादा सुगंधित होता है कि अगर एक फूल यहाँ पे लिया है हम लोग दिल्ली शहर में, तो एक फूल जो है पूरे दिल्ली शहर में खुशबू फैला गया, एक फूल पर्याप्त है पूरे दिल्ली के लिए, पूरे दिल्ली में खुशबू आएगी उस फूल से, इतनी खुशबू होती है। पारे स्वर्गलोक का अगर आप गुणगान सुनेंगे तो स्वर्गलोक के प्रति आकर्षण जागृत होगा आपका, जब आप गुणगान नहीं सुनना चाहिए आप। तो इस तरह से वर्णन किया गया है कृष्ण का नाम। इतने बील मंगल ठाकुर ने कृष्ण को जिस तरह संबोधित किया है उससे इसकी पुष्टि होती है, हे प्रभु आपके वृंदावन के ऐश्वर्य के बारे में मैं क्या कहूं, वृंदावन की सुंदरियों के पांव के आभूषण की चिंतामणि से बढ़कर है और उनके वस्त्र स्वर्गिक पारिजात पुष्प की तरह है। यहाँ की गायें दिव्य धाम की सुरभि गायों की तरह है, अतः आपका ऐश्वर्य समुद्र के समान अगाध है। वृंदावन में धाम में ऐश्वर्य ढका रहता है क्योंकि वहां पर माधुर्य जो है रस प्रधान है, मां मधुरता की प्रधानता है, वहां पर इस कारण से ऐश्वर्य जो है वो ढका रहता है। जिस तरह से उदाहरण देते श्रील रूप गोस्वामी की, एक समझ लीजिए कटोरा है, सोना है उसमें, लेकिन वो सोना जो ढका हुआ है ऊपर घी से, ऊपर से आपको केवल घी नजर आ रहा है, लेकिन आप घी हटाएंगे तो नीचे देखेंगे सोना ही सोना। तो इस प्रकार वृंदावन में बहुत अधिक ऐश्वर्य है लेकिन दिखाई नहीं पड़ता है इन आंखों से। और द्वारका का जो ऐश्वर्य का वर्णन किया गया है, लेकिन वृंदावन से उसकी तुलना की जाए तो वृंदावन के सामने द्वारका का ऐश्वर्य भी कुछ भी नहीं है। तो इस प्रकार वृंदावन जो है वो सबसे ज्यादा ऐश्वर्य से भरा हुआ, अतः आपका ऐश्वर्य समुद्र के समान अगाध है। सर्व सामान्य जो व्यक्ति प्रमुख व्यक्तियों में अग्रणी होता है वह सर्व सामान्य कहलाता है। जब कृष्ण द्वारका में निवास कर रहे थे तो शिव ब्रह्मा इंद्र जैसे देवगण तथा अन्य कई उनका दर्शन करने जाया करते थे। जो द्वारपाल इन देवताओं को प्रवेश करने देने के लिए नियुक्त था वह इतना व्यस्त रहता था कि उसने एक दिन कहा, हे ब्रह्मा हे शिव आप इस आसन पर बैठकर प्रतीक्षा करें, हे इंद्र आप अपना स्तुति पाठ न करें, इसे अशांति उत्पन्न होती है, कृपया शांतिपूर्वक प्रतीक्षा करें। हे वरुण चले जाइए, हे देवताओं आपका समय ना गवाए। कृष्ण अत्यंत व्यस्त है, वे आपसे नहीं मिल सकते, जो आप लोग कई बार इस प्रकार कहना पड़ता था। हम जाते ना वो कथा, ब्रह्मा जी जब मिलने आए थे चेतन चरतामृत में, तो ब्रह्मा जी जब मिलने आए तो उन्होंने कहा ठीक है अभी पूछता हूँ, पूछ के बताता हूँ। तो उनसे पूछने को कहा, द्वारकाधीश ने कहा उनसे पूछो आप कौन से ब्रह्मा जी है। कौन सा ब्रह्मा जी हूं, एक ही तो हूं। ठीक है उनसे कहो चतुर्मुखी ब्रह्मा आए हैं, चतुर्मुखी ब्रह्मा आए हैं आपसे मिलना चाहते हैं। तो ठीक है उनको भेज दो। बोलते हैं सब कुछ ठीक है, कैसे चल रहा है? तो क्या सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन पहले सबसे पहले एक प्रश्न है मेरा, और भी बहुत सारे प्रश्न है मेरे अलावा, और भी कई ब्रह्मा है क्या तो देखना चाहते हो? हाँ मिलाता हूं। तो फिर भगवान ने इशारा किया, इच्छा प्रकट की, तो अनंत कोटि ब्रह्मांड से कई ब्रह्मा वहां पर प्रकट हुए। शिव जी भी प्रकट हो गए, है ना, अनेकों ब्रह्मांड से, किसी के 10 सर थे, किसी के 100 सर थे, किसी के 1000 सर थे, किसी के 1,00,000 सर थे, किसी के 1,00,000,000 सर थे। वो सारे ब्रह्मा जो है एक दूसरे को नहीं देख पा रहे थे, लेकिन ये जो चतुर्मुखी ब्रह्मा थे ये सभी ब्रह्मा को देख पा रहे थे, और उनको ऐसा लग रहा था कि हाथियों के झुंड में अपने आप को खरगोश के रूप में मान रहे थे। उनको ऐसा लगा कि मैं खरगोश की तरह हूं हाथियों के झुंड के बीच में, है ना, ये कहां में फंस गया बीच में। तो फिर ब्रह्मा जी ने जब ऐश्वर्य देखा तो हैरान हो गए वो देखकर, है ना। तो फिर बाद में सबने ब्रह्मा जी ने पूछा कि बताइए हमारे लिए क्या आ गया। नहीं नहीं बस आप लोगों को मैं ऐसे देखना चाहता था, पूछना चाहता सब कुछ ठीक है कि नहीं, अगर सब कुछ ठीक है तो आप सब जा सकते हैं, जाइए। तो सब लोग वापस चले गए, है ना। तो चतुर्मुखी जो ब्रह्मा है देखकर बड़े हैरान हो गए। तो इस कारण से भगवान को सर्व सम्मान्य बताया गया है और सबके द्वारा सम्मानित है। तो इतने बड़े बड़े देवी देवता भी लाइन लगा के बाहर खड़े रहते हैं भगवान से मिलने के लिए, और द्वारपाल उनका जो है उनके पास इतनी शक्ति है द्वारपाल के पास कि वो द्वारपाल भी रोक देता है। जैसे वैकुंठ के द्वारपाल जय विजय थे, उन्होंने रोक दिया चार कुमारों को कि आप अंदर नहीं जा सकते हो, वस्त्र हीन होकर इस तरह से कहां जा रहे हो आप लोग, अंदर बाहर खड़े हो। अच्छा फिर उन्होंने क्या किया, शाप दे दिया। तो खैर वो तो भगवान की इच्छा थी, लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि द्वारपाल जो होते हैं भगवान के, उनके पास भी इतनी शक्ति होती है वो किसी भी देवी देवता को रोक सकते हैं वहां अंदर जाने से। इतने सारे ब्रह्मा क्यों हैं? इतने सारे सर इसलिए हैं, ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है इस ब्रह्मांड के लिए। 4 सर चाहिए, कई ब्रह्मांड इतने बड़े हैं उसके लिए 10 सर चाहिए, 1,000 सर चाहिए। तो ब्रह्मांड के साइज के हिसाब से सर दिए गए। ताकि ब्रह्मा जी जो है यार टेंशन बना रहे, एक सर देंगे तो बहुत परेशान रहेंगे, क्योंकि अपना ब्रह्म लोक उनको संभालना है सबसे पहले, और उसके अलावा फिर 14 लोक है, 14 planetary system है, जो सबसे छोटा है, ये सबसे छोटा ब्रह्मांड हमारा। लेकिन हमारे ब्रह्मा जी शुद्ध भक्त है, ये सबसे बड़ा सौभाग्य है। तो इस कारण से अनंत कोटि ब्रह्मांड है, अनंत कोटि ब्रह्मा जी भी हैं, उनके बहुत सारे सर हैं, लेकिन क्योंकि इसलिए हैं क्योंकि उसमें ज्यादा कार्य करने को है, बहुत सारा कार्य करने को है, इस कारण से उनको ज्यादा सर दिए गए। ठीक है, हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न था उनके चले गए। ब्रज नहीं, वज्र ब्रज के साथ नहीं लगता। किसको? वो तो बौद्ध धर्म को बंद कराना था ना, बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को बंद करने के लिए और समाज में स्पष्ट रूप से विभाजन करने के लिए कि कौन वास्तव में भक्त है और कौन भक्त नहीं है, ताकि सामान्य व्यक्ति जो अगर वो भक्ति करना चाहेगा तो भक्तों के समाज में बड़ी आसानी से आ सकता है। पहले खिचड़ी बनी हुई थी, भक्तों के समाज में भी मायावादी घूम रहे हैं, बौद्ध धर्मी वाले घूम रहे हैं, मायावादी तो नहीं थे, मगर बौद्ध धर्म भी एक तरह से क्या है, मायावादी भी एक तरह से छुपा हुआ बौद्ध धर्म ही है। तो बौद्ध धर्म भी लगभग वैसे ही था एक तरह से, लेकिन इन भक्तों के बीच में भी कई बौद्ध धर्मी के लोग भी घुसे हुए थे। तो विभाजन चाहते थे भगवान स्पष्ट रूप से कि ये मायावादी है और ये वैष्णव है, ताकि वैष्णव लोग शुद्ध भक्ति करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। नहीं तो कैसे पता चलेगा? अभी आपको पता चलता, तुरंत पता चलता, हाँ ये वैष्णव लोग हैं, इस कौन के लोग वैष्णव संप्रदाय के, तुरंत चले जाते हैं आप, है ना। नहीं तो आप गलती से कहीं भी घुस जाए, तो स्पष्टीकरण हो गया।
प्रभु जी, हम हमेशा भगवान बुद्ध को भी कृष्ण जी का अवतार मानते हैं, लेकिन भगवान बुद्ध जी ने अपने टाइम पे आके आत्मा नहीं है करके ऐसा क्यों बताया उन्होंने? आत्मा का खंडन क्यों किया उस टाइम?
नहीं, वो भी निर्वाण की बात करते हैं, लेकिन उनका ये कहना था कि जब निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है तब तो आत्मा भी नहीं रहता, फिर आत्मा और शरीर दोनों ही शून्य हो जाता है। यहाँ तक मुझे पता है इस तरह से कि बहुत बहुत धर्म में जो शिक्षा वो ये है कि निर्वाण के समय फिर आत्मा शरीर दोनों का ही अस्तित्व नहीं रहता है, सब शून्य हो जाता है। स्वर्ग लोक का तो पता नहीं, पृथ्वी लोक का तो पता है। पृथ्वी लोक का इसलिए पता है कि प्रभुपाद के कारण, प्रभुपाद के कारण पूरे पृथ्वी में दीपदान चल रहा है। आप जानते हैं पूरे पृथ्वी में लोग कार्तिक मना रहे हैं प्रभुपाद की वजह से। पूरे पृथ्वी में प्रभुपाद की वजह से भागवत का पाठ चल रहा है, प्रभुपाद की वजह से पूरे पृथ्वी में तुलसी पूजा चल रही है, प्रभुपाद की वजह से पूरे पृथ्वी में लोग मंगल आरती में आ रहे हैं। यही तो सत्युग है, और क्या था सत्युग?
जब युद्ध शुरू हो गया ना तो उसके बीच में अगर कोई कहे कि मुझे मतलब प्यास लगी है, मैं मेरा तीर्थ हो इतने हैं, तो ये सब नहीं देगा। उस समय युद्ध चल रहा है, उस समय एक ही सवाल है कि मारो, तो उन्होंने बताया कि मेरा भैया दस गया है, तो हमारे बड़ा अधर्म नहीं है तो मुझे मार दो, क्योंकि ये युद्ध चल रहा है। और
नहीं, फिर भी निहत्ते के ऊपर वार नहीं किया जाता था। युद्ध के दौरान कोई अगर निहत्ता होता था तो उसको छोड़ देते थे। वो बात अलग है, युद्ध शुरू हो चुका है आप मार सकते हो, अलग बात। लेकिन कोई अगर अस्त्र नहीं होता था किसी के बाद तो युद्ध नहीं करते थे। ये साधारण शिष्टाचार था युद्ध का। और पहिया फंसा हुआ उनका, वो पहिया नहीं निकाल पा रहे, उस समय मारने के लिए कह रहे हैं। वो भी अधर्म था। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसे अवस्था में अगर किसी को मारा जाता है तो वो अधर्म ही माना जाएगा।
भगवान
निष्कर्ष दिया, भगवान जो कहे वही वास्तव में धर्म है। ये बात सही है, ये असली सत्य है। नास्तिक लोग देवी देवताओं की पूजा करके देवी देवताओं के स्तर पर पहुंच जाते, मतलब हाँ, देवताओं की पूजा करके आप देवलोक में जा सकते हैं। अगर आप कर्मकांड यज्ञ करते हैं और तो आपको देवता की उपाधि प्राप्त हो सकती है। वर्णाश्रम धर्म का कोई पालन करता है 100 जन्मों तक तो ब्रह्मा जी को उपाधि प्राप्त हो सकती है, और अधिक योग्य है तो फिर शिवलोक जा सकते हैं। स्नान स्नान जल से, इतना जल है आपके पास? हाँ, वो अलग बात। वो स्नान क्या हुआ? ठीक है, कर लीजिए। और कुछ दीप से आप उनका चेहरा देखते हैं, आप उनका चेहरा देखते हैं,
हम देखने के लिए
उनके लिए भी है। जब आप लाइट चलेगी तो तभी आप अपने को देख पाओगे ना शीशे में। आप शीशे में देख सकते हो अंधेरा, जब है नहीं देख सकते ना, तो बस
ये।
हाँ, वो तो आरती की बात कर रहे थे।
आरती की
4 करोड़ ज्यादा फायदा, 10 करोड़ फायदा है, पूरे दिन करते रहो और ज्यादा फायदा है। और भी सेवा है ना, इसलिए काफी है। ठीक है, और भी कई सेवा है, अभी थोड़ा कि दीपदान ही करते रहे। ठीक है,
लोग दो भी करते
रहे। अगर इसका लाभ बताया, जैसे किसी का दीप बुझ रहा है, आप मान लीजिए दीप जलाया आपने और दीपदान किया और आप उसको वापस रखने गए और आपने देखा कि वहां पे किसी का दीप बुझ रहा है, उसको दीप को अगर आप जलाते हैं तो उसका लाभ मिलेगा आपको। मान लीजिए इन्होंने दीपदान किया किशोर प्रभु ने और याना रख दिया, और मैं आता हूँ उसके बाद, मैं देखता हूँ कि इनका दिया बिल बुझ रहा है और दिए को मैं जला देता हूँ फिर से, तो मुझे लाभ मिलेगा। नहीं, अक्सर तो लोग बुझा लेते हैं, बुझाई देते उसको रख देते वो बुझ ही जाएगा ना,
अपने आप बुझाना चाहिए,
अपने आप क्यों बुझाना, रख दो बुझ जाएगा अपने आप। इतने आपको इतना प्रयास क्यों करना है आपको, दुश्मनी थोड़ा है उससे कि बुझाना है आपने,
इनका मतलब है कि बुझाना चाहिए,
बुझाना नहीं चाहिए, उसको रख दो आप, रख दो और वो बुझ रहा हो और मैं आके जला देता हूँ या और आगे जला देता हूँ तो मुझे लाभ मिलेगा, ये बता रहा
हूँ।
ठीक है, हाँ ले सकते हैं, आरती तो है वो एक तरह से, ऑल्टर भी तो ये करते हैं, दीपदान तो करते हैं रोज, मंगल आरती आप कर रहे हो, दीपदान तो है, बस वो मेटल में होता है, ये मिट्टी में होता है तो दीपदान है कि नहीं, तो हम तो पूरे साल दीपदान करते हैं, कार्तिक में ज्यादा लाभ मिलता है ये फायदा, बस तो ये सब करना है, कुंड स्नान, प्रातःकाल मंगल आरती में उठना, ब्रह्म मुहूर्त में मंगल आरती करना, और उसके बाद जब तो करना ही है, तुलसी महारानी पूजा करना, उनकी आरती करना है ना, श्रीमद् भागवत का श्रवण करना, खासकर कृष्ण कथा भागवत का जो दशम स्कंध है उसमें से पढ़ना या सुनाना, ये बहुत लाभ मिलता है इससे, परिक्रमा करना ब्रज में जाके गिरिराज जी की परिक्रमा करना, तो ये सब करने का पूरा फायदा होता है।
परिक्रमा चल रही है 84 कोस की,
हाँ
चले,
हरे कृष्ण भक्ति रसाम सिंधु की जय, शील प्रभुपाद की जय, समेत भक्त वृंद की जय, हरे कृष्ण
जय।